भीड़ से दूर हवेली के पिछवाड़े का हिस्सा हमेशा शांत रहता था। यहाँ रंगों की आवाज नहीं आ रही थी, न ढोल की थाप, न हंसी, बस पेड़ों की छांव, हल्की हवा और एक अजीब सी स्थिरता। गगन ने अदिति का हाथ छोड़ा नहीं, उसकी पकड़ अब भी सख्त थी। अदिति ने फिर झटका दिया, छोड़ो मेरा हाथ। इस बार उसने छोड़ दिया, लेकिन पीछे हटने के बजाय वो एक कदम और करीब आ गया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन भीतर जमा गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। तुम्हारी वजह से, अदिति की भौहें सिकुड़ गईं। मेरा और रम्या का रिश्ता खराब हो गया। एक पल की चुप्पी, हवा जैसे रुक गई। अदिति ने उसे घूरा, व्हाट? गगन की आंखों में अब सिर्फ शिकायत नहीं थी, आरोप था। आखिर तुमने शामली के साथ वो सब क्यों कराया? अदिति की सांस एक सेकंड को अटक गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। गगन आगे बोला, क्यों उसे इस हवेली से बाहर कराया? क्यों उसकी छवि खराब करवाई? क्यों ऐसा माहौल बनाया कि वो यहां टिक ही ना सके? अदिति ने उसे कुछ सेकंड तक देखा, फिर वो हंसी। वो हंसी मजाक वाली नहीं थी, वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई बड़ी बात को छोटा साबित कर रहा हो। अपने काम से मतलब रखो, उसने सपाट स्वर में कहा। उसकी आंखें अब ठंडी थीं। समझे? गगन का जबड़ा कस गया, लेकिन अदिति रुकी नहीं। वो हल्का सा झुकी ताकि उसकी आवाज और साफ सुनाई दे। और अगर बुआ जी ने तुम्हें यहां देख लिया, उसने धीमे से कहा, तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। गगन की आंखों में एक क्षण के लिए बेचैनी चमकी। अदिति ने उसे गौर से देखा, जैसे वही तलाश रही हो। फिर उसने एक और वार किया, शुक्र करो उस दिन तुम्हें जाने दिया गया। गगन की भौहें सिकुड़ गईं। वरना, उसने ठहर कर कहा, तुम्हें जेल पहुंचाने की बात हो रही थी। गगन स्तब्ध रह गया। अदिति की आवाज अब फुसफुसाहट जैसी थी। वो मैं थी जिसने उन्हें शांत किया। एक लंबी चुप्पी। पेड़ की पत्तियां हल्के से हिली। दूर कहीं से ढोल की आवाज आई, लेकिन यहां जैसे सब स्थिर था। गगन ने उसे देखा, उसकी आंखों में अब गुस्से से ज्यादा घृणा थी। तुम कितनी बुरी हो। अदिति का चेहरा नहीं बदला। सबके रिश्ते तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गए। उसकी आवाज भारी हो गई, लेकिन देखो तुम्हारा रिश्ता भी टूट गया। ये वार सीधा था। और इस बार अदिति की आंखों में हल्की चमक आई, गुस्से की, लेकिन वो तुरंत संभल गई। उसने ठंडी हंसी हंसी, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी ठुड्डी हल्की ऊपर उठ गई। आर्यन मुझसे बहुत प्यार करता है। गगन कुछ बोलने ही वाला था कि उसने हाथ उठाकर रोक दिया। और तुम कौन होते हो हमारे रिश्ते पर सवाल उठाने वाले? अब उसकी आवाज में चेतावनी थी, स्पष्ट, तेज। देखो, वो सीधी खड़ी हो गई। अभी यहां से चले जाओ। हवा अब थोड़ी तेज हो गई थी, पेड़ों की छाया जमीन पर हिल रही थी। वरना, उसने धीमे से कहा, अगर बुआ जी आ गईं, एक सेकंड का ठहराओ, तो तुम सीधे जेल में दिखोगे। गगन की सांस भारी हो गई, लेकिन अदिति अभी हद नहीं हुई थी। उसने आखिरी बार किया, और अगर पापा ने देख लिया, अब उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी, तो फिर भगवान के घर समझो। गगन की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि अब, उसने धीमे से कहा, ना तो वो शामली को पसंद करते हैं, एक ठहराओ, और ना ही उसके साथियों को। हवा थम गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कोई अदृश्य रेखा उनके बीच खिंच गई हो। गगन के चेहरे पर गुस्सा था, अदिति के चेहरे पर नियंत्रण। दूर से फिर ढोल की आवाज आई, रंग हवा में उड़े, लेकिन यहां सब कुछ थम गया। हवेली के अंदर माहौल बिल्कुल अलग था। बाहर गार्डन में रंग उड़ रहे थे, ढोल बज रहे थे, हंसी गूंज रही थी, लेकिन अंदर मुख्य हॉल में एक अजीब सा इंतजार पसरा हुआ था। रत्ना देवी सोफे पर सीधी बैठी थी। उनके सामने सेंटर टेबल पर चांदी की थाली में गुलाल रखा था, अनटच्ड। उनके साथ सुषमा देवी बैठी थी। रत्ना देवी ने घड़ी की तरफ देखा, फिर दरवाजे की तरफ, फिर हल्की चिंता के साथ बोली, विशु अभी तक वापस क्यों नहीं आया? उनकी आवाज में शिकायत कम, बेचैनी ज्यादा थी। त्योहार शुरू हो चुका है, सब होली खेल रहे हैं, सुषमा देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रत्ना आ जाएगा। फिर उन्होंने थोड़ा झुककर धीरे से जोड़ा, चल फोन कर, थोड़ी डांट लगा तब आएगा। रत्ना देवी ने तुरंत फोन उठा लिया। स्क्रीन पर नाम चमका, विश्वनाथ। उधर अपने केबिन में विश्वनाथ अभी अभी शामली की तस्वीर की राख डस्टबिन में गिराकर सीधा हुआ ही था। कमरे में हल्की जली हुई गंध अब भी थी। तभी फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी। माँ, उसकी उंगलियां एक पल को रुकी, फिर उसने कॉल उठा ली। हाँ माँ, रत्ना देवी की आवाज आई। बेटा, काम पूरा हो गया हो तो हवेली चल दिया जा। उनकी आवाज नरम थी। जानता है, सब यहाँ तेरे ही इंतजार में है। एक छोटा सा ठहराओ, तभी सब रंग खेलेंगे। विश्वनाथ की आंखें एक पल के लिए बंद हुईं, फिर उसने सपाट स्वर में कहा, माँ आप सबसे कह दीजिए वो रंग खेलने। एक सेकंड, मुझे नहीं आना। हॉल में बैठे दोनों महिलाओं की आंखें फैल गईं। रत्ना देवी ने तुरंत कहा, ऐसा नहीं कहते बेटा, त्योहार है। उनकी आवाज अब हल्की जिद में बदल गई थी। बस थोड़ी देर के लिए आ जा। चुप्पी। फोन की उस पार सिर्फ सांस की आवाज। रत्ना देवी ने फिर कहा, मैं इंतजार कर रही हूँ। विश्वनाथ ने धीरे से आंखें खोली। ठीक है, उसने छोटा सा जवाब दिया, आ रहा हूँ, और फोन काट दिया। फोन रखते ही उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने इंटरकॉम उठाया, सेंड हिम इन। कुछ सेकंड बाद उसका पर्सनल असिस्टेंट अंदर आया। यस सर, विश्वनाथ ने सीधे पूछा, क्या पता चला अब तक? असिस्टेंट थोड़ा झिझका, सर शामली मैम का अभी कुछ पता नहीं चला। विश्वनाथ की आंखें स्थिर रहीं। असिस्टेंट आगे बोला, वो अपने घर को छोड़कर कहाँ चली गई किसी को नहीं पता। उसने फाइल खोली। वहां के लोग कह रहे थे उनके मकान मालिक को शायद पता हो। एक पल, लेकिन वो भी उसी दिन घर छोड़कर कहीं चले गए। विश्वनाथ की उंगलियां टेबल पर धीमे से थम गई। पता नहीं क्यों, कमरे में सन्नाटा। फिर उसकी आवाज आई, धीमी लेकिन बेहद सख्त, फाइंड आउट। असिस्टेंट सीधा खड़ा हो गया। यस सर, जाओ। वो तुरंत बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया। विश्वनाथ खड़ा रहा। उसके मन में ख्याल उठा, माँ क्या उन्हें कुछ पता हो सकता है या नहीं भी? लेकिन उनसे सीधे कैसे पूछें? उसकी आंखों में ठंडी चमक आई। उसने धीमे से कहा, माय डियर वाइफ, हल्की मुस्कान, तुम जहां भी हो। उसकी नजर डस्टबिन पर गई। मैं बहुत जल्दी वहां आ रहा हूँ। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में एक मध्यम आकार की फैब्रिक डिजाइन कंपनी के अंदर मशीनों की हल्की आवाज, कपड़ों की खुशबू, रंगों की दुनिया। वहां एक टेबल पर बैठी थी शामली। उसने लाल रंग का प्लाजो सूट पहना हुआ था, कॉटन का, सादा लेकिन बेहद सलीके से पहना हुआ। कुर्ते की आस्तीन हल्की मुड़ी हुई थी, बाल पीछे ढीले से बांधे हुए। चेहरे पर मेकअप नहीं, सिर्फ हल्की थकान और शांति। उसकी उंगलियां कपड़े के सैंपल पर चल रही थी। वो पैटर्न देख रही थी, रेखाएं खींच रही थी, रंग मिला रही थी, जैसे वो कपड़े नहीं अपनी नई पहचान बुन रही हो। उसकी टेबल पर कई स्केच फैले थे, कुछ अधूरे, कुछ बिल्कुल परफेक्ट। वो पूरी तरह काम में डूबी हुई थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, मिस शामली। वो हल्का सा चौंकी, मुड़कर देखा, उसका बॉस उसके पीछे खड़ा था।